समर्पण। ईश्वर ने यह वचन दिया है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने सारे मन से मेरे पास आओगे। यरमैया 26 आयत 13। ईश्वर को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना आवश्यक है, और नहीं तो उनके अनुरूप होने के लिए जो परिवर्तन आवश्यक है वो हम में हो ही नहीं सकते। हम अपने स्वभाव से ही ईश्वर विमुख हैं। पवित्र आत्मा ने हमारी अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा सारा हृदय दुख से भरा है, नख से सिर लो कहीं कुछ आरोग्यता नहीं। हम लोग शैतान के फंदे में बुरी तरह फंस गए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार उसके द्वारा बंदी किए गए हैं। ईश्वर हमें चंगा करना तथा मुक्त करना चाहते हैं, किंतु इसके लिए अपात परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें अपनी समस्त स्वाभाविक वृत्तियों में पुनर्जीवन लाना पड़ेगा, अतएव हमें ईश्वर के समक्ष पूर्ण समर्पण कर देना उचित है। अहम के विरुद्ध जो संग्राम होता है वो संसार का सबसे भीषण युद्ध है। आत्मसमर्पण करने में अहम के शमन में संघर्ष का होना आवश्यक है। फिर भी आत्मा को ईश्वर के पांवों पर समर्पित कर देने के बाद ही उसमें नई पवित्रता का प्रकाश फैल सकेगा। जैसे शैतान ने चित्रित किया है वैसा ईश्वर का शासन नहीं, जिसमें सबों को बिना विचार के ही अंधों की तरह सर झुका लेना पड़ता हो। उनका शासन विधान तो ऐसा है कि बुद्धि और अंतरचेतना दोनों को अच्छा जचता है। सृष्टा ने सारी सृष्टि को आमंत्रित कर कहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यशाया 1 आयत 18। ईश्वर अपने प्राणियों पर स्वेच्छाचारियों की तरह जबरदस्ती नहीं करता। वैसे पूजन अर्चन उसे स्वीकार नहीं जो अपनी खुशी और पूरे हृदय से न किए गए हों। जबरदस्ती आत्मसमर्पण करा लेने से न तो मस्तिष्क का स्वस्थ विकास होगा और न चरित्र का शुद्ध गठन ही हो पाएगा। यह तो मनुष्य को मशीन बना देगा, और ईश्वर का उद्देश्य मनुष्य को मशीन बना देना नहीं है। उसकी इच्छा तो ये है कि सृष्टि की श्रेष्ठतम वस्तु मनुष्य उन्नति और विकास की परम सीमा तक पहुंच जाए। वो हम लोगों को आमंत्रित कर ये अनुनय विनय करता है कि हम अपने को उसके अनुग्रह पर समर्पित कर दें, ताकि उसके सद्भाव और सौजन्य प्राप्त कर सकें और उसके अनुरूप कर सकें। अब पाप की श्रृंखलाओं से मुक्त होने और ईश्वरीय सृष्टि की गौरवपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर जगत में स्वच्छंद विहार करने के लिए श्रेयस्कर मार्ग को चुनना पूरी तरह हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। क्या आपको यह मालूम होता है कि ख्रीष्ट को सबका सब अधीन करना बहुत बड़ा बलिदान है? आप अपने ही को यह प्रश्न कीजिए, ख्रीष्ट ने मुझे क्या दिया है? जब हम अपने आप को ईश्वर को सौंप देते हैं तो हमें उन सभी वस्तुओं का पूर्ण परित्याग कर देना आवश्यक है जिनके कारण हम उससे अलग किए जा सकते हैं। मतलब मुक्तिदाता ने कहा है, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न करे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14 आयत 33। जो कुछ भी हृदय को ईश्वर से विमुख करें उसे छोड़ दीजिए। अनेक लोग धन देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों की धन लिप्सा, वैभव की लालच और ऐश्वर्य की तृष्णा वो सोने की जंजीर है जिसके द्वारा शैतान उन्हें बांध रखता है। दूसरी श्रेणी के लोगों के द्वारा यश और सांसारिक मर्यादा की पूजा होती है। तथापि तीसरे प्रकार के लोग स्वार्थ सुख और निरंकुश जीवन के भोग विलास की पूजा करते हैं, किंतु ये सब गुलामी की जंजीर हैं और इन्हें तोड़ना कर्तव्य है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आधे ईश्वर के रहें आधे संसार के। जब तक हम पूरी तरह ईश्वर के नहीं होते तब तक हम ईश्वर के पुत्र ही नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर की सेवा करने को इच्छुक तो हैं, किंतु उन्हें ऐसा विश्वास है कि वे उसके विधान स्वयं ही स्वीकार कर लेंगे। ऐसे लोगों के हृदय में ख्रीष्ट के प्रति प्रगाढ़ प्रीति नहीं। वे ईसाइयों के निश्चल और निर्मल जीवन इसलिए पावन करना चाहते हैं ताकि उन्हें ईश्वरीय आदेश के अनुसार स्वर्ग मिल जाए। ऐसे धर्म का कुछ मूल्य नहीं। किंतु जब यीशु का वास हृदय में होता है तो अंतरात्मा उनके प्रेम में ऐसा विभोर हो उठता है, हृदय उनके समागम में ऐसा उल्लासपूर्ण हो उठता है कि वे उनमें तादात्म्य लाभ कर उठते हैं। इस तादात्म्य में अहम का विस्मरण होता है, आत्मभाव उस परमात्म भाव में तिरोहित हो जाता है। यीशु के प्रति प्रेम क्रियाशीलता का उद्गम स्थान है। जिन्हें ईश्वर पर प्रगाढ़ अनुराग है, वे ये नहीं पूछते कि ईश्वरीय विधान में कम से कम कितना समर्पण करना आवश्यक है। ऐसे लोगों का मानदंड अल्प अथवा न्यूनतम श्रेष्ठता की प्राप्ति नहीं। ऐसे लोग तो उच्च से उच्चतम और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं, ताकि वे सर्वांशतः मुक्तिदाता में आत्मसात हो जाएं। पूरी हार्दिक इच्छा से वे सर्वस्व समर्पित करते हैं, उसी के महत्व के अनुरूप लगन और रुचि प्रदर्शित करते हैं। इस प्रगाढ़ प्रेम के बिना यीशु पर प्रेम दिखाने की सारी बातें ढकोसला हैं, थोथे तर्क हैं और कोरी नीचता है। क्या आप ये सोचते हैं कि यीशु पर सर्वस्व अर्पित कर देना महान बलिदान है? तब आप ये विचार कीजिए कि यीशु ने आपको क्या दिया है। ईश्वर पुत्र ने हम लोगों की मुक्ति के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, जीवन दिया, प्रेम दिया और यातनाएं सही। अब क्या हम नीच लोगों को उनके इतने प्रगाढ़ प्रेम पाकर भी अपने हृदय उन्हें समर्पित करने में हिचकिचाना चाहिए? अब तो हम लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उनके अनुग्रह के फलस्वरूप आनंद मना रहे हैं। इसी का ये परिणाम है कि जिस अज्ञानांधकार और क्लेश के भीषण गर्त से हम उबर आए हैं, उसकी कल्पना नहीं करता और उसे कुछ समझते ही नहीं। जिनके हृदय स्थल को हमारे पापों ने बांध डाला, जिनके शरीर पर हमारे अपराधों ने शत शत भालाएं चुभोए, उन्हीं की कृपा दृष्टि के हम इच्छुक हों और उन्हीं की प्रीति और बलिदान का तिरस्कार करें, जब हम लोगों ने ये जान लिया कि हमारे आलोकमय प्रभु ने कितना महान प्रायश्चित किया था, कितनी आदर्श आत्मवज्ञा की थी। तब क्या अपने जीवन में संघर्ष और आत्मवज्ञा के द्वारा उन्नत होना हम नापसंद करेंगे? घमंडी लोग ये पूछते हैं कि ईश्वर के ग्रहण और स्वीकार करने के पहले ही हम लोग क्यों प्रायश्चित में डूबें और अपने आप को समर्पित कर दें। इसके उत्तर में मेरा नम्र निवेदन है कि आप यीशु की ओर देखें। वे सर्वथा निष्पाप थे, नहीं, वे तो स्वर्ग के चिर राजकुमार थे, किंतु मनुष्य के कल्याण के हेतु वे मानव जाति के पाप की तरह घोषित हुए। वो अपराधियों के संग गिना गया, पर उसने बहुतों के पाप का भार उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशाया 53:12। अब जरा ये सोचिए कि जब हम सभी कुछ अर्पित कर देते हैं तो वास्तव में क्या छोड़ते हैं, और वो भी इसलिए अर्पित करते हैं कि यीशु उसे पवित्र बनावे, अपने लोहू से धोकर स्वच्छ बनावे और अप्रतिम प्रेम से उज्ज्वल और अमर। फिर भी लोग सर्वस्व अर्पण करना टेढ़ी खीर समझते हैं। ऐसा सुनना शर्म की बात है, ऐसे लिखने पर धिक्कार है। ईश्वर हमसे ये भी नहीं कहता कि जो वस्तुएं अपने लाभ की हैं उन्हें भी समर्पित कर दीजिए। ऐसा वो कह भी नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी वो करता और कहता है उसका एकमात्र लक्ष्य हमारा कल्याण ही है। जिन्होंने यीशु को अपनी भलाई के लिए नहीं ग्रहण किया है, उन लोगों के बीच ईश्वर करे ये सुबुद्धि आ जाए कि खिष्ट उन्हें अत्यधिक मूल्यवान और प्रचुर परिमाण में कल्याणकारी वस्तुएं दे सकते हैं, और वैसी वस्तुएं वे अपनी सारी सामर्थ्य और शक्ति से नहीं प्राप्त कर सकते। जब मनुष्य ईश्वर की विचार परंपरा के विरुद्ध सोचता और कार्य करता है, तो वो अपनी आत्मा पर ही घातक चोटें पहुंचाता है, उस पर अन्याय और अत्याचार करता है।
इस संभ्रम में पड़ना कि ईश्वर अपने पुत्रों को क्लेश में डूबे देख प्रसन्न होता है भारी भूल है। समस्त स्वर्ग मनुष्य के आनंद के लिए उद्योगशील है। हमारे परमपिता किसी भी मनुष्य के लिए आनंद के कपाट बंद नहीं करते। स्वर्गीय घोषणा सदा से हमें इसी ओर सचेत कराती है कि हम उन विश्वासमय पदार्थों का त्याग करें जो क्लेश और शोक के कारण हैं, और जो आनंद और स्वर्ग के द्वार हमारे लिए बंद कर देते हैं। संसार के मुक्तिदाता ने मनुष्य को उसी रूप में ग्रहण किया है जिस रूप में वो अपनी सारी कमजोरियों, दुर्बलताओं, त्रुटियों और दोषों के साथ है।
वे न केवल पाप मुक्त करते और मुक्तात्मा बनाते हैं, किंतु उन सबों की आंतरिक अभिलाषाएं भी पूरी करते हैं जो उनके समक्ष विनीत और नम्र हैं। जो उनके पास जीवन की रोटियां मांगने आवे, उन्हें शांति और विश्राम देना तो उनका परम कर्तव्य है। वे केवल यह चाहते हैं कि हम उन्हीं कर्तव्यों में रत रहें जो हमें आनंद की चोटी पर ले चलें, और जिन्हें आज्ञा उल्लंघन करने वाले कभी सपनों में भी देख न सकें। आत्मा का वास्तविक सत्य इसी में है, उनका यथार्थ आनंद पूर्ण जीवन इसी में है कि अंतस्थल में यीशु की वह धवल ज्योतिर्मयी आशापूर्ण किरणें उद्भासित होती रहें। अनेक लोग यह पूछते हैं कि किस प्रकार ईश्वर को आत्मसमर्पण किया जाए। आप अपने आप को उसे सौंप तो देना चाहते हैं, किंतु आपकी नैतिक शक्ति दुर्बल है, आप संशय के पाश में आबद्ध हैं और पापमय जीवन की आदतें आपको शिकंजों में जकड़े हुई हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं और निश्चय बालू की रस्सी की तरह निरर्थक हैं। आप अपने विचारों, आवेशों, मोह आदि पर काबू नहीं कर सकते। जब आप यह जान जाते हैं कि आपने अपने सारे वचन भंग किए हैं, प्रतिज्ञाएं निभाई नहीं हैं, तो आपको अपनी सच्चाई पर विश्वास नहीं होता। आपकी इच्छा शक्ति दुर्बल पड़ जाती है, आप अपनी शक्ति सामर्थ्य पर भरोसा नहीं कर पाते, और आप यह सोचने लगते हैं कि ईश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। किंतु इतना हतोत्साह और भग्न हृदय होना आवश्यक नहीं। जिस चीज की आपको जरूरत है वो है इच्छा शक्ति की समझ। मनुष्य स्वभाव की निर्धारणी शक्ति, निर्णयात्मक शक्ति का केंद्र और निश्चयात्मक शक्ति का स्त्रोत्र यही है। सारा दारोमदार इसी इच्छा शक्ति के ऊपर है। ईश्वर ने निश्चय करने की शक्ति मनुष्य को दे दी है, अब वो मनुष्य पर है कि उसका उपयोग करे न करे। आप अपने हृदय में परिवर्तन न ला सकेंगे, इसे मान लिया। आप उन्हें अपने हृदय के उद्धार और अनुराग अपनी सामर्थ्य पर अर्पण न कर सकेंगे, यह भी मान लिया। किंतु फिर भी उनकी सेवा करने का निश्चय आप कर सकते हैं। यह मार्ग आप अपने ही बल पर चुन सकते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति उन्हें अर्पित कर सकते हैं। फिर वे आपके अंतरस्थल में ऐसी प्रेरणा भर देंगे कि आप उनके ही अनुसार कार्यों में लीन होंगे। इस प्रकार आपका पूरा स्वभाव ख्रिस्त के आत्मा के अधीन प्रकाशित हो उठेगा। आपके अनुराग उन पर केंद्रित होंगे और भाव के विचारमय आदि सब कुछ उनके अनुरूप हो जाएंगे। सच्चरित्रता और शुद्धात्मा की लालसा करना बड़ा उत्तम है, किंतु लालसा यदि केवल लालसा बनकर ही रही तो किस काम की। अनेक लोग ईसाई बनने की लालसा करते हुए भी पथ भ्रष्ट हों विनष्ट हुए, क्योंकि ये लोग उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं सके जहां अपनी इच्छा शक्ति का ईश्वर की इच्छा शक्ति में पूर्ण विसर्जन होता है। अब ये ईसाई होने के मार्ग को चुन नहीं सकते। इच्छा शक्ति को उचित उपयोगिता से जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लाया जा सकता है। अपनी इच्छा शक्ति को यीशु के चरणों में समर्पित कर देने पर आप उस शक्तिशाली और पराक्रमी वीर से मित्रता स्थापित कर लेते हैं जो सारे संसारी पराक्रमों और शक्तियों के ऊपर हैं। तब आपको ऊपर से शक्ति मिलेगी जिससे आप दृढ़ और धीर बनेंगे। इस प्रकार सदा ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण द्वारा आप अभिनव जीवन, नूतन उल्लास और नवीन आशाएं प्राप्त कर सकेंगे तथा धार्मिक विश्वास से ओतप्रोत भी हो उठेंगे।